एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर स्टैक को डिटेल में रिवाइज करेंगे। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। आज हम स्टैक, लिफो, ऑपरेशंस, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, कन्वर्जन, इवैल्यूएशन और एग्जाम टिप्स सब करेंगे।
और सुनते समय एक छोटा नियम रखो, हर इम्पोर्टेंट आइडिया पर अपने शब्दों में आंसर बोलने की कोशिश करना। अगर तुम केवल सुनोगे तो फेमिलियर फीलिंग आएगी, लेकिन जब तुम प्रेडिक्ट करोगे कि अगला एलिमेंट कौन सा निकलेगा या स्टैक में क्या बचेगा, तभी रियल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बीच बीच में मैं तुम्हें रोक कर पूछूंगी, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है?
हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक की डेफिनेशन, फिर लीफो और टीओपी, उसके बाद एप्लीकेशंस पीयूएसएच और पीओपी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, फिर पाइथन लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शंस, अंत में एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की तीन नोटेशंस, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। हर बड़े हिस्से के बाद छोटा रिकैप होगा ताकि चैप्टर आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं बल्कि एक कनेक्टेड सिस्टम लगे।
चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? इसे ऐसे समझो, मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर वे में ग्रुप करना ताकि स्टोरेज, एक्सेस और प्रोसेसिंग एफिशिएंटली हो सके। यानी सिर्फ डेटा रखना पर्याप्त नहीं है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी मैटर करता है। यही ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन में तीन आइडियाज लिखना यूजफुल है, स्टोर, ऑर्गेनाइज और एक्सेस डेटा, साथ में उन पर एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म करना। चैप्टर में स्ट्रिंग और लिस्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, जबकि लिस्ट में अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन पर रिवर्सल, स्लाइसिंग और काउंटिंग जैसे ऑपरेशन किए जा सकते हैं।
एक सेकेंड पॉज करके सोचो, क्या हर सीक्वेंस ऑटोमेटिकली स्टैक है? नहीं, स्ट्रिंग और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन स्टैक की स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगा। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉड आइडिया है और स्टैक उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ये डिस्टिंक्शन आंसर में बहुत साफ लिखना।
चैप्टर ये भी बताता है कि स्टैक और क्यू पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पाइथन में ये डायरेक्टली अलग बिल्ट इन डेटा टाइप्स के रूप में अवेलेबल नहीं है, फिर भी इनके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में इनका एक्सटेंसिव यूज होता है। इसलिए क्लास 12 में फोकस डेफिनेशन, ऑपरेशंस, इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस पर है।
क्विक चेक, अगर क्वेश्चन आए डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, तो केवल ये मत लिखना कि डेटा स्टोर करने के लिए। बेहतर आंसर होगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके फास्टर एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंट स्टोरेज और कन्वीनियंट प्रोसेसिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। छोटा आंसर है, लेकिन तीन कीवर्ड्स उसे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं।
अब स्टैक की तरफ आते हैं। लाइब्रेरी में बुक्स का पाइल या घर में प्लेट्स का स्टैक इमेजिन करो। नई प्लेट कहाँ रखोगे? टॉप पर। प्लेट निकालोगे तो कहाँ से? टॉप से। बीच में से निकालना इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि ऊपर की प्लेट्स पहले हटानी पड़ेंगी। यही लीनियर अरेंजमेंट, जहां सेम एंड से ऐड और रिमूव होता है, स्टैक है।
इस सेम एंड को टीओपी कहते हैं। स्टैक की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका अर्थ है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ वही सबसे पहले रिमूव होगा। ध्यान रहे, लीफो केवल स्लोगन नहीं है, यह इंसर्शन और डिलीशन के ऑर्डर को डिफाइन करता है।
एक सिंपल सीक्वेंस लेते हैं। एम्प्टी स्टैक में पहले 1PUSH किया, फिर 2, फिर 3, अब 2P पर 3 है। POP करने पर 3 निकलेगा, उसके बाद 2 और फिर 1। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि पहला इंसर्टेड एलिमेंट पहले निकलेगा, तो वह क्यू जैसी सोच स्टैक पर लगा रहा है। स्टैक में लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट फर्स्ट आउट होता है।
अब तुम बताओ, अगर स्टैक में ABC इसी ऑर्डर में PUSH किए गए, तो पहला POP क्या देगा? एक सेकंड रुककर सोचो। आंसर है सी, क्योंकि सी मोस्ट रीसेंट एलिमेंट है और टॉप पर है। ऐसे क्वेश्चंस में पूरा स्टैक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस इंसर्शन ऑर्डर और लीफो रिलेशन ट्रैक करो।
स्टैक को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स एक सीक्वेंस या लीनियर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन लीनियर होना अकेला सफिशिएंट नहीं है। स्टैक की डिफाइनिंग कंडीशन है वन एंड इंसर्शन एंड डिलीशन। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि स्टैक की विशेषता क्या है तो टीओपी और लिफो दोनों मेंशन करना।
चैप्टर कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी उठाता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर फंक्शन कॉल्स कैसे हैंडल करते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को मेमोरी कैसे एलोकेट करता होगा। सोर्स इन क्वेश्चंस को स्टैक की मोटिवेशन से जोड़ता है, लेकिन हमें अनसपोर्टेड इंटरनल डिटेल्स इन्वेंट नहीं करनी है। एग्जाम में इतना रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन लिखना कि स्टैक प्रोग्रामिंग और मेमोरी रिलेटेड प्रोसेसिंग में एक्सटेंसिवली यूज्ड कॉन्सेप्ट है।
अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करती है और स्टैक उसमें वन एंड एक्सेस वाला लीनियर अरेंजमेंट है, उसका एनटीओपी है और उसका रूल लाइफो है। अगर ये फाउंडेशन क्लियर है तो आगे के ऑपरेशंस और पाइथन फंक्शंस नेचुरली समझ आएंगे।
स्टैक के रियल लाइफ एग्जांपल्स याद करने का बेस्ट तरीका लिस्ट रटना नहीं, पैटर्न पहचानना है। अलमीरा में क्लोथ्स का पाइल, वर्टिकली रखी चेयर्स, रिस्ट पर पहनी बैंगल्स और पैंट्री में बॉक्सेस का पाइल, इन सब में एक्सेस एक एंड से कन्वीनियंट होता है। ऊपर रखी या सबसे हाल में जोड़ी चीज पहले हटती है।
प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में पहला एग्जांपल स्ट्रिंग रिवर्सल है। अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को क्रम से स्टैक में PUSH करते जाएं, तो पहला POP लास्ट कैरेक्टर देगा, फिर उससे पहले वाला कैरेक्टर, और ऐसे करते हुए रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। इसलिए स्टैक नेचुरली लास्ट इन फर्स्ट आउट होने के कारण रिवर्सल टास्क के लिए यूजफुल है।
मान लो कैरेक्टर्स ए बी और सी स्टैक में इसी ऑर्डर में डाले, POP सीक्वेंस क्या होगा, सी फिर बी फिर ए। यही छोटा एग्जाम्पल एग्जाम में स्ट्रिंग रिवर्स प्रोग्राम समझाने के लिए काम आता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टैक कैरेक्टर को रिवर्स नहीं करता, वह एक्सेस ऑर्डर को रिवर्स कर देता है।
दूसरा एप्लीकेशन टेक्स्ट या इमेज एडिटर का अंडू और रीडू है। जब हम एडिटिंग करते हैं, रीसेंट चेंजेस को ट्रैक करने के लिए स्टैक का आइडिया यूजफुल होता है। अंडू पर मोस्ट रीसेंट एडिटिंग पहले रिवर्स होती है, यहाँ फिर वही लिफो दिखाता है, लेटेस्ट चेंज फर्स्ट हैंडल।
वेब ब्राउजिंग वाला एग्जाम्पल भी बहुत इंट्यूटिव है। मान लो P1 से P2 और फिर P3 पर गए। अब बैक बटन एक बार दबाने पर P3 से P2 और दूसरी बार दबाने पर P1, यानी लास्ट विजिटेड पेज पहले वापस आती है। ब्राउजर हिस्ट्री को स्टैक के रूप में मेंटेन करने का यही लॉजिक चैप्टर में दिया गया है।
चौथा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पैरेंथेसिस मैचिंग है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हर ओपनिंग पैरेंथेसिस का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए और नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। स्टैक ओपनिंग पैरेंथेसिस को ट्रैक कर सकता है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस आने पर टॉप ओपनिंग पैरेंथेसिस से मैचिंग चेक किया जाता है। मिसमैच हो तो कंपाइलर एरर दे सकता है।
एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या ब्राउजर हिस्ट्री या अंडो में केवल एक आइटम रखा जाता है? नहीं, स्टैक का मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन एक एंड पर रहती है, इसलिए हिस्ट्री में कई पेजेस हो सकते हैं, फिर भी बैक ऑपरेशन लेटेस्ट पेज से शुरू होगा। यह लिफो का एप्लीकेशन है, कोई अलग रूल नहीं।
एग्जाम पॉइंट, एप्लीकेशंस लिखते समय कम से कम एक रियल लाइफ और दो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना अच्छा रहेगा। केवल नेम्स की लिस्ट से बेहतर है कि हर एग्जाम्पल में लिफो कनेक्शन बताओ। जैसे स्ट्रिंग रिवर्सल में लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट मिलता है, वेब हिस्ट्री में लास्ट विजिटेड पेज पहले वापस आता है और अंडो में रिसेंट एडिट पहले हैंडल होती है।
छोटा रिकैप, स्टैक एप्लीकेशंस वहां दिखती हैं जहां लेटेस्ट आइटम को पहले एक्सेस करना यूजफुल है। स्ट्रिंग रिवर्सल, अंडो और रिडू, ब्राउजर बैक हिस्ट्री और पैरेंथीसिस मैचिंग को इसी लेंस से देखो। अब हम एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से एक्चुअल ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे। वहां PUSH और POP की लैंग्वेज बिल्कुल प्रिसाइज रखनी होगी।
स्टैक की दो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, PUSH और POP। PUSH इंसर्शन ऑपरेशन है और ये न्यू एलिमेंट को टॉप पर ऐड करता है। POP डिलीशन ऑपरेशन है और ये टॉप का टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव करता है। दोनों ऑपरेशन सेम एंड पर होते हैं, इसलिए स्टैक का लिफो बिहेवियर मेंटेन रहता है।
मैं एक रैपिड चेक करती हूँ, PUSH में कौन सा एलिमेंट ऐड होता है और कहाँ। आंसर सोचकर बोलो। नया एलिमेंट टॉप पर। POP में कौन सा एलिमेंट रिमूव होता है? टीओपी का करंट एलिमेंट। अगर तुम मिडिल या बॉटम लिख रहे हो तो डेफिनेशन फिर से पढ़नी होगी। ये बेसिक डिस्टिंक्शन कोडिंग और डायग्राम्स दोनों में बार बार आएगा।
अब एरर कंडीशंस। स्टैक फुल हो और हम नया एलिमेंट PUSH करने की कोशिश करें तो ओवरफ्लो कंडीशन आती है। स्टैक एम्प्टी हो और हम POP करने की कोशिश करें तो अंडरफ्लो कंडीशन आती है। याद रखने का तरीका, ओवरफ्लो में अंदर डालने जगह नहीं, अंडरफ्लो में बाहर निकालने के लिए एलिमेंट नहीं।
यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर PUSH को अंडरफ्लो से जोड़ देते हैं, लेकिन सोर्स बेस्ड आंसर में PUSH फुल स्टैक पर ओवरफ्लो से जुड़ा है, POP एम्प्टी स्टैक पर अंडरफ्लो से जुड़ा है। एक लाइन में लिखो, PUSH may lead to overflow, POP from an empty stack leads to underflow. ये exact relation miss मत करना।
Glasses वाला stack सोचो, empty stack में glass 1 PUSS किया, फिर glass 2, अब POP करने पर glass 2 निकलेगा। अगर glass 3 PUSS करोगे, तो वह नया top होगा और अगला POP glass 3 देगा। हर operation के बाद top बदल सकता है, इसलिए ट्रेसिंग करते समय करंट टीओपी को मेंटली अपडेट करते रहो।
एक सेकंड पॉज। स्टैक में 1, 2, 3 है, पहले पीओपी किया, फिर 4 पीओएसएच किया, फिर 2 पीओपी किए, कौन से एलिमेंट्स निकलेंगे? पहला 3, फिर 4, फिर 2, बचा हुआ एलिमेंट 1 होगा। ध्यान दो, नया 4 बीच में नहीं गया, वह पीओपी के बाद टॉप पर एड हुआ।
इस एग्जाम्पल में एक इंटरेस्टिंग बात है, सीक्वेंस सिर्फ इंसर्शन ऑर्डर से नहीं, ऑपरेशंस की पूरी हिस्ट्री से डिटरमाइन होती है, इसलिए आउटपुट क्वेश्चंस में हर लाइन पढ़ो। अपेंड या PUSH से एलिमेंट ऊपर आएगा, पॉप या POP से करंट टॉप निकलेगा। जल्दबाजी में ओरिजिनल लिस्ट ऑर्डर को ही फाइनल आंसर मत समझना।
अब तक ऑपरेशंस क्लियर है, PUSH इंसर्शन, POP डिलीशन, POP कॉमन एक्सेस एंड, ओवरफ्लो फुल स्टैक पर और अंडरफ्लो एम्प्टी स्टैक पर। अगर नोटबुक है तो 3 छोटे स्टैक्स बनाकर अपने हाथ से ऑपरेशंस ट्रेस करो। विजुअल मेमोरी इस चैप्टर में बहुत मदद करती है, क्योंकि हर आंसर ऑर्डर पर डिपेंड करता है।
अब पाइथन इंप्लीमेंटेशन। चैप्टर के अनुसार सिंपल स्टैक बनाने के लिए लिस्ट का यूज किया जा सकता है। लिस्ट की राइट मोस्ट साइड को TOP मान लेते हैं, क्योंकि अपेंड और पॉप दोनों एंड पर काम करते हैं। इस अप्रोच में अलग से TOP वेरिएबल या एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन जरूरी नहीं रहती।
एम्प्टी स्टैक बनाने के लिए ग्लास स्टैक नाम का एम्प्टी लिस्ट लिया जाता है। कंसेप्चुअली ग्लास स्टैक में अभी कोई ग्लास नहीं है। जब ऑप पुश कॉल होगा, अपेंड एलिमेंट को लिस्ट के एंड पर ऐड करेगा। वही एंड हमारा TOP है, इसलिए पाइथन लिस्ट को स्टैक की तरह यूज करने की पूरी लॉजिक एक कंसिस्टेंट एंड चुनने पर टिकी है।
पाइथन लिस्ट में अपेंड इंसर्शन के लिए और पॉप डिलीशन के लिए यूज होते हैं। अपेंड एलिमेंट को राइट मोस्ट एंड पर जोड़ता है और पॉप बिना इंडेक्स दिए राइट मोस्ट एलिमेंट रिमूव करता है। यही राइट मोस्ट एलिमेंट स्टैक का TOP माना गया है। एग्जाम में मेथड और ऑपरेशन का रिलेशन प्रिसाइसली लिखना, अपेंड फॉर PUSH, पॉप फॉर POP।
लेकिन एक सटल पॉइंट है, पाइथन लिस्ट का साइज फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इस इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक तब तक फुल नहीं होगा जब तक मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है। इसका मतलब थियोरेटिकल ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बस इस पर्टिकुलर पाइथन लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में सामान्य फिक्स्ड कैपेसिटी वाला ओवरफ्लो नॉर्मली फेस नहीं होता।
यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में अच्छे कॉन्सेप्चुअल आंसर की पहचान है। पहले जनरल स्टैक रूल बताओ कि फुल स्टैक पर PUSH ओवरफ्लो दे सकता है, फिर पाइथन लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए लिखो कि लिस्ट की फिक्स्ड लिमिट नहीं है, इसलिए मेमोरी अवेलेबल होने तक इंप्लीमेंटेड स्टैक फुल नहीं माना जाता। दो कॉन्टेक्स्ट को मिक्स मत करना।
अगर तुम्हें किसी एग्जैक्ट कोडिंग डाउट में अटकना हो तो एडजी में उसे छोटे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ ब्रेक कर सकते हो। पीओपी किस साइड पर है, अपेंड क्या करेगा और एम्प्टी कंडीशन कहाँ चेक होगी। इससे कोड रटने के बजाय एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आता है। अब हम फंक्शंस को 1 by 1 अनपैक करेंगे।
पहला फंक्शन है इज एम्प्टी। इसका काम चेक करना है कि ग्लास स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ये लेन ऑफ ग्लास स्टैक को 0 से कंपेयर करता है। अगर लेन 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। ये छोटा फंक्शन आगे टॉप और ऑप पॉप दोनों में सेफ्टी चेक का काम करता है।
सोचो इस एम्प्टी फंक्शन क्यों यूजफुल है? क्योंकि एम्प्टी स्टैक पर पॉप करना अंडरफ्लो दे सकता है। अगर ऑप पॉप पहले इस एम्प्टी चेक करे तो प्रोग्राम कंट्रोल तरीके से अंडरफ्लो प्रिंट कर सकता है और नन रिटर्न कर सकता है। यानी हेल्पर फंक्शन केवल फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं, एरर हैंडलिंग का प्रैक्टिकल हिस्सा है।
और पुश के दो पैरामीटर्स हैं, स्टैक का नाम और इंसर्ट किया जाने वाला एलिमेंट। फंक्शन अपेंड मेथड से एलिमेंट को लिस्ट के एंड पर जोड़ता है। इसमें रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी नहीं है क्योंकि लिस्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई किया जा रहा है। एग्जाम में इंसर्शन ऑपरेशन और अपेंड मेथड का कनेक्शन जरूर एक्सप्लेन करना।
अपसाइज फंक्शन यह ग्लास स्टैक में एलिमेंट्स की संख्या बताता है और लेन फंक्शन रिटर्न करता है। अगर स्टैक में ग्लास वन और ग्लास टू है तो साइज टू होगा। साइज टॉप एलिमेंट नहीं बताता, यह केवल काउंट बताता है। काउंट और टॉप वैल्यू को अलग अलग पहचानना कॉमन आउटपुट क्वेश्चंस में जरूरी है।
टॉप फंक्शन मोस्ट रीसेंट एलिमेंट रीड करता है लेकिन उसे रिमूव नहीं करता। पहले इज एम्प्टी चेक होती है। एम्प्टी होने पर स्टैक इज एम्प्टी मैसेज और नन रिटर्न होता है। अदरवाइज लिस्ट की लास्ट पोजीशन यानी लेंथ माइनस वन इंडेक्स का एलिमेंट लिया जाता है। इसलिए टॉप और ओपी पॉप का डिफरेंस याद रखो, रीड वर्सेस डिलीट।
क्विक क्वेश्चन, अगर ग्लास स्टैक में जी एल ए एस एस वन और जी एल ए एस एस थ्री है तो टॉप कॉल क्या देगी? जी एल ए एस एस थ्री क्या इससे जी एल ए एस एस थ्री लिस्ट से हटेगा? नहीं, अगर आप पॉप कॉल करोगे तभी जी एल ए एस एस थ्री रिमूव होकर रिटर्न होगा। कई स्टूडेंट्स टॉप को पॉप समझ लेते हैं, इसलिए ये डिफरेंस अंडरलाइन करके लिखना।
ऑप पॉप फंक्शन पहले इज एम्प्टी चेक करता है, एम्प्टी स्टैक होने पर अंडरफ्लो प्रिंट करके नन रिटर्न करता है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो लिस्ट का पॉप मेथड कॉल होता है और रिमूव टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न होता है। इसलिए फंक्शन दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, सेव डिलीशन और डिलीटेड वैल्यू को वापस देना।
डिस्प्ले फंक्शन स्टैक के कंटेंट्स दिखाता है या लिस्ट की लेंथ लेकर इंडेक्स को लास्ट से जीरो तक रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवर्स करता है। ऐसा इसलिए कि टॉप मोस्ट एलिमेंट पहले डिस्प्ले हो। अगर लिस्ट ऑर्डर नीचे से ऊपर है तो डिस्प्ले आउटपुट ऊपर से नीचे दिखाने के लिए रिवर्स ट्रेवर्सल करता है।
प्रोग्राम फ्लो ट्रेस करते हैं, पहले जी एल ए एस एस वन पी यू एस एच, फिर जी एल ए एस एस टू पी यू एस एच साइज टू, फिर ओ पी पॉप। इसलिए जी एल ए एस एस टू रिमूव होगा, उसके बाद जी एल ए एस एस थ्री पी यू एस एच किया जाता है। अब टॉप जी एल ए एस एस थ्री होगा और स्टैक में नीचे जी एल ए एस एस वन होगा। डिस्प्ले टॉप से शुरू करके जी एल ए एस एस थ्री और फिर जी एल ए एस एस वन दिखाएगा।
फिर वाइल लूप बार बार ऑप पॉप करता है, पहले जी एल ए एस एस थ्री फिर जी एल ए एस एस वन रिमूव होंगे। अगली कॉल पर स्टैक एम्प्टी है इसलिए अंडरफ्लो और नन मिलेगा। आइटम नन होने पर लूप ब्रेक होता है और स्टैक इज एम्प्टी नाउ मैसेज आता है। ये ट्रेस दिखाता है कि एम्प्टी चेक लूप को सेफली स्टॉप करता है।
अब कोडिंग रिकैप, इज एम्प्टी लेन जीरो चेक करता है और पुश अपेंड से ऐड करता है। साइज लेन से काउंट देता है, टॉप लास्ट एलिमेंट रीड करता है, रिमूव नहीं, और पॉप एम्प्टी चेक के बाद पॉप से डिलीट करता है। डिस्प्ले लास्ट इंडेक्स से रिवर्स ट्रेवर्सल करता है। ये छह पॉइंट्स लिखकर तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा।
एक मिनी आउटपुट चैलेंज, नंबर लिस्ट में 10, 20 और 30 हैं, फिर 40 अपेंड किया जाता है। उसके बाद दो पॉप वैल्यूज रिजल्ट में ऐड होती हैं। पहली वैल्यू 40 होगी, दूसरी 30, इसलिए रिजल्ट 70 आएगा। यह प्योर लीफो ट्रेस है और ऐसे क्वेश्चंस में हर पॉप के बाद लिस्ट की करंट स्टेट लिखना बहुत हेल्पफुल है।
अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच लिखा जा रहा है, जैसे x प्लस वाई या x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस में पैरेंथेसिस इवैल्यूएशन ऑर्डर बताते हैं और इनफिक्स एक्सप्रेशंस BODMAS रूल फॉलो करते हैं। ह्यूमन रीडर्स के लिए इनफिक्स नेचुरल है क्योंकि हम इसी फॉर्म में सामान्यतः एक्सप्रेशंस लिखते हैं।
प्रीफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर अपने ऑपरेंड से पहले आता है, एक्स प्लस वाई को प्रीफिक्स में प्लस एक्स वाई लिखा जा सकता है। इसे पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। यहाँ ऑपरेटर की पोजीशन ही बताती है कि ऑपरेशन किस ऑपरेंड्स पर लगेगा, इसलिए पैरेंथेसिस की जरूरत कम हो जाती है।
पोस्टफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आता है। एक्स प्लस वाई को एक्स वाई प्लस लिखा जा सकता है। इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तीनों फॉर्म्स का वन लाइन कंपैरिजन याद रखो, इनफिक्स में बीच में, प्रीफिक्स में पहले, पोस्टफिक्स में बाद में। डेफिनेशन लिखते समय पोजिशन और एग्जाम्पल दोनों देना सेफेस्ट अप्रोच है।
अब चेक करो एक्सप्रेशन एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड में ऑपरेटर्स कहाँ हैं? इनफिक्स, क्योंकि ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बीच हैं। एक्सप्रेशन प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई प्रीफिक्स है, क्योंकि प्लस सबसे पहले है और मल्टीप्लीकेशन उसके बाद अपने ऑपरेंड से पहले है। एक्सप्रेशन एक्स वाई मल्टीप्लाई जी प्लस पोस्टफिक्स है, क्योंकि ऑपरेटर्स बाद में आए हैं।
प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का एडवांटेज यह है कि ऑपरेटर्स ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार पोजीशन होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंस समझने के लिए इनफिक्स की तरह हर बार बीओडीएमएस अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती। सोर्स के अनुसार प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सिंगल ट्रावर्सल से इवैल्यूएट किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर पहले से इनकोडेड है।
लेकिन एक बात क्लैरिफाई कर दूं, ये मत समझना कि इनफिक्स गलत नोटेशन है। प्रोग्रामिंग में इनफिक्स कॉमनली यूज्ड फॉर्म है। प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर को प्रेसिडेंस और पेरेंथेसिस इंटरप्रेट करनी पड़ती हैं। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स उसी ऑर्डर को एक्सप्रेशन में पहले से अरेंज कर देते हैं, इसलिए चैप्टर कन्वर्जन और इवैल्यूएशन पर फोकस करता है।
नोटेशन रीकैप: इनफिक्स में एक्स प्लस वाई, प्रीफिक्स में प्लस एक्स वाई और पोस्टफिक्स में एक्स वाई प्लस। एग्जाम में लेबल्स उल्टे मत करना। प्रीफिक्स को पॉलिश और पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि स्टैक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कैसे मैनेज करता है।
इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में दो चीजें ट्रैक होती हैं, ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस स्टैक में, और कन्वर्टेड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग में। ऑपरेंड्स को सीधे पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में अपेंड किया जाता है। यही एक की रूल है। कन्वर्जन के दौरान केवल ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस स्टैक में जाते हैं, ऑपरेंड्स नहीं।
एल्गोरिदम की शुरुआत एमटी पोस्ट एक्स स्ट्रिंग बनाने और इनफिक्स एक्सप्रेशन को इन एक्स में इनपुट लेने से होती है। फिर एक्सप्रेशन के प्रत्येक कैरेक्टर को लेफ्ट टू राइट प्रोसेस किया जाता है। कैरेक्टर ऑपरेंड हो तो पोस्ट एक्स में अपेंड, लेफ्ट पैरेंथेसिस हो तो स्टैक में पीयूएसएच। यहीं से कन्वर्जन का सिस्टमैटिक फ्लो शुरू होता है।
राइट पैरेंथेसिस मिलने पर स्टैक से एलिमेंट्स पीओपी करके पोस्ट एक्स में अपेंड किए जाते हैं। जब तक मैचिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस न मिल जाए, दोनों पैरेंथेसिस फाइनल पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में नहीं आते, यानी उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेंथेसिस इवेल्युएशन गाइड करते हैं, लेकिन पोस्टफिक्स आउटपुट में शामिल नहीं होते।
अगर कैरेक्टर ऑपरेटर है तो उसकी प्रेसिडेंस को स्टैक के टीओपी ऑपरेटर से कंपेयर किया जाता है। करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लोअर हो तो हायर या रेलेवेंट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स पहले पीओपी होकर पोस्ट एक्स में जाते हैं, उसके बाद करंट ऑपरेटर पीयूएसएच होता है। अगर ये रूल कंफ्यूजिंग लगे तो इसे पेंडिंग ऑपरेटर्स की क्यू नहीं स्टैक समझो। टॉप वाला ऑपरेटर पहले डिसाइड होगा।
एग्जाम्पल एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई एट। शुरुआत में स्टैक और पोस्ट एक्स दोनों एम्प्टी हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में जाएगी, एक्स आउटपुट में आएगा, प्लस ऑपरेटर स्टैक में जाएगा और वाई आउटपुट में अपेंड होगा। क्लोज पैरेंथेसिस पर प्लस आउटपुट में पीओपी होगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस डिस्कार्ड होगी।
फिर डिविजन ऑपरेटर प्रोसेस होगा और अगली लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में जाएगी, जेड आउटपुट में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन स्टैक में पीयूएसएच होगा और एट आउटपुट में अपेंड होगा। क्लोजिंग पैरेंथेसिस पर मल्टीप्लीकेशन पीओपी होगा और मैचिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस डिस्कार्ड होगी। इनपुट खत्म होने के बाद स्टैक में बचे ऑपरेटर्स भी क्रम से पी ओपी करके पोस्ट एक्स में अपेंड किए जाते हैं।
एक सेकंड पॉज करके खुद प्रोसेस बोलो। ऑपरेंड कहाँ जाएगा? डायरेक्टली पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में। ऑपरेटर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंस के हिसाब से स्टैक में। राइट पैरेंथेसिस पर क्या होगा? ऑपरेटर्स पीओपी होंगे, लेफ्ट पैरेंथीसिस डिस्कार्ड होगी। एंड में क्या करना है, स्टैक एम्प्टी होने तक रिमेनिंग ऑपरेटर्स पीओपी करने हैं। यही एल्गोरिदम का स्केलेटन है।
कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स ऑपरेंड्स को भी स्टैक में डाल देते हैं। कन्वर्जन में ऐसा नहीं है, स्टैक ऑपरेटर्स और पैरेंथीसिस ट्रैक करता है जबकि ऑपरेंड्स आउटपुट स्ट्रिंग में जाते हैं। दूसरा मिस्टेक है क्लोजिंग पैरेंथीसिस को पोस्टफिक्स आउटपुट में लिख देना। तीसरा मिस्टेक है फाइनल रिमेनिंग ऑपरेटर्स को भूल जाना। इन तीन चेक्स से कन्वर्जन एरर्स कम होंगे।
एग्जाम में कन्वर्जन क्वेश्चन आए तो केवल फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन न लिखो। अगर क्वेश्चन हर चरण का स्टेटस मांगता है, हर कैरेक्टर के बाद स्टैक और पोस्ट एक की स्थिति दिखाओ। इससे मेथड क्लियर होती है और पार्शियल मार्किंग का चांस भी बेहतर रहता है। आंसर नीट रखने के लिए टू कॉलम स्टाइल नोटबुक में बना सकते हो।
कन्वर्जन का फाइनल स्टेप है आउटपुट पोस्ट एक। इस पूरे प्रोसेस में स्टैक प्रेसिडेंस और नेस्टिंग संभालता है। इसलिए चैप्टर की सेंट्रल कनेक्शन याद रखो, स्टैक केवल डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, एक्सप्रेशन प्रोसेसिंग में ऑर्डर मैनेज करने के लिए भी यूज होता है। अब हम कन्वर्टेड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे।
अब हम सेकंड मेजर एक्सप्रेशन आइडिया कवर कर चुके हैं। इनफिक्स ह्यूमन फ्रेंडली है, पोस्टफिक्स प्रेसिडेंस को पोजिशन में एनकोड करता है और कन्वर्जन में ऑपरेटर्स तथा पेरेंथेसिस स्टैक में ट्रैक होते हैं। अब इवैल्यूएशन के समय रूल थोड़ा बदलेगा। इस बार स्टैक में ऑपरेंड्स PUSH होंगे और ऑपरेटर्स आने पर कैलकुलेशन होगी।
पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन एल्गोरिथम में एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अगर कैरेक्टर ऑपरेंड है तो उसे स्टैक पर PUSH करते हैं, अगर ऑपरेटर है तो स्टैक से टू एलिमेंट्स POP करते हैं, उन पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर रिजल्ट वापस स्टैक पर PUSH करते हैं। अंत में वैलिड एक्सप्रेशन में स्टैक पर सिंगल एलिमेंट बचना चाहिए।
यहाँ कन्वर्जन से डिफरेंस ध्यान दो। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में केवल ऑपरेटर स्टैक पर PUSH होते हैं, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में ऑपरेंड स्टैक पर PUSH होते हैं। दोनों जगह स्टैक है लेकिन स्टैक में जाने वाली चीजें अलग हैं। यही कंपैरिजन कॉमनली टेस्टेड है, इसलिए इसे अपने रिवीजन शीट में अलग बॉक्स में लिखना।
सोर्स का एग्जांपल है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 7, 8, 2, × 4, / पहले 7, 8 और 2 ऑपरेंड स्टैक में PUSH होते हैं, मल्टीप्लाई आने पर 2 और 8 POP होकर 8 × 2 का रिजल्ट 16 बनाते हैं और 16 वापस PUSH होता है, फिर 4 PUSH होता है।
अब डिवाइड ऑपरेटर पर 4 और 16 प्रोसेस होंगे, रिजल्ट 4 आएगा और वह स्टैक पर वापस जाएगा, प्लस ऑपरेटर पर 4 और 7 प्रोसेस होंगे, फाइनल रिजल्ट 11 बनेगा। यहाँ ऑपरेंड ऑर्डर समझना जरूरी है। पीओपी में पहला निकला एलिमेंट राइट ऑपरेंड और दूसरा निकला एलिमेंट लेफ्ट ऑपरेंड माना जाता है, खासकर सब्ट्रैक्शन और डिविजन जैसे ऑपरेटर्स में।
इसलिए पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में केवल नंबर्स देखकर कैलकुलेशन मत करो, हर स्टेप पर स्टैक की करंट स्टेट लिखो। ऑपरेंड मिले तो PUSH, ऑपरेटर मिले तो 2 POP ऑपरेशन, फिर रिजल्ट PUSH। अगर इनपुट खत्म होने पर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट नहीं बचता तो एक्सप्रेशन इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन माना जाएगा।
अब तुम्हारी टर्न। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन AB + C मल्टीप्लाई में पहले क्या होगा, A और B PUSH प्लस आने पर दोनों POP और A + B का रिजल्ट PUSH, फिर C PUSH और मल्टीप्लाई रिजल्ट के साथ अप्लाई होगा। गिवन A = 3, B = 5 और C = 1 हो तो आंसर 8 आएगा।
एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, सोर्स इवैल्यूएशन एल्गोरिदम बाइनरी ऑपरेटर्स अज्यूम करता है, इसलिए ऑपरेटर मिलने पर 2 एलिमेंट्स POP करने की बात है। अगर स्टैक में पर्याप्त ऑपरेंड्स न हो तो एक्सप्रेशन प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं होगा। फाइनल स्टैक में सिंगल एलिमेंट होना वैलिडिटी चेक है। एग्जाम आंसर में एल्गोरिदम के स्टेप्स इसी सीक्वेंस में लिखना।
कॉमन मिस्टेक नंबर 1, ऑपरेंड को देखकर ऑपरेशन करना। नहीं, ऑपरेंड सिर्फ PUSH होगा। मिस्टेक नंबर 2, ऑपरेटर पर एक ही वैल्यू POP करना। सोर्स एल्गोरिदम 2 एलिमेंट्स POP कहता है। मिस्टेक नंबर 3, फाइनल स्टैक चेक स्किप करना। अगर एक एलिमेंट नहीं बचा तो आंसर वैलिड रिजल्ट नहीं बल्कि इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा।
पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का एग्जाम फ्रेम ऐसे लिख सकते हो, इनपुट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लो, कैरेक्टर्स को लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करो, ऑपरेंड को स्टैक पर पी यू एस एच करो, ऑपरेटर पर टू ऑपरेंड्स पी ओ पी करके ऑपरेशन अप्लाई करो, रिजल्ट पी यू एस एच करो और अंत में सिंगल स्टैक एलिमेंट को आउटपुट करो, अदरवाइज इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रिपोर्ट करो।
अगर तुम पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले केवल स्टैक स्टेटस लिखो, कैलकुलेशन बाद में करो। उदाहरण के लिए हर सिंबल के नीचे पी ओ एस एच या पी ओ पी ऑपरेशन नोट करो। इस तरह एडजी में एक्टिव रिकॉल या रिविजन चैलेंज की तरह खुद को टेस्ट कर सकते हो और फिर रिजल्ट से पहले अपना ट्रेस वेरीफाई कर सकते हो।
अब हम फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर से डेफिनेशन, ट्रू और फॉल्स, कोड आउटपुट, स्टैक ट्रेसिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल प्रोग्राम, पैरेंथेसिस मैचिंग, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और ऑड नंबर्स वाला स्टैक प्रोग्राम जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटजी ये है कि हर टॉपिक के लिए डेफिनेशन, वर्किंग और वन ट्रेस तैयार रखो।
ट्रू और फॉल्स प्रैक्टिस स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्रू, स्टैक लीफो फॉलो नहीं करता। फॉल्स, पी यू एस एच अंडरफ्लो कंडीशन देता है। फॉल्स, फुल स्टैक पर ओवरफ्लो रिलेवेंट है। पोस्टफिक्स में ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद आते हैं। ट्रू, आंसर के साथ एक शॉर्ट रीजन लिखोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दिखेगी।
कोड आउटपुट में लिस्ट की इनिशियल स्टेट और हर अपेंड तथा पॉप केयरफुली ट्रैक करो। अगर नंबर लिस्ट में 10, 20, 30 है, अपेंड 40 के बाद फर्स्ट पॉप 40 और नेक्स्ट पॉप 30 होगा। इसी तरह कैरेक्टर्स टी ए एम अपेंड करके तीन पॉप्स करने पर आउटपुट एम ए टी बनेगा, यानी स्ट्रिंग एम ए टी रिवर्स होकर टैन नहीं। ऑपरेशंस के अनुसार एम ए टी से शुरू होकर फाइनल कॉन्कैटिनेशन मैट। चलो ध्यान से, फर्स्ट एम देन ए देन टी, इसलिए आउटपुट एम ए टी होगा।
यहां मैं तुम्हें रोकूंगी क्योंकि कोड आउटपुट में वर्डिंग कंफ्यूज कर सकती है। टी ए एम को स्टैक में इसी ऑर्डर में डालने पर पॉप्स एम ए टी होंगे, आउटपुट वेरिएबल में इसी ऑर्डर से जोड़ने पर एम ए टी बनेगा। यानी अगर इनपुट स्ट्रिंग टैम थी तो स्टैक ने उसे रिवर्स करके एम ए टी दिया। हमेशा इनपुट ऑर्डर और आउटपुट कॉन्कैटिनेशन अलग अलग लिखो।
स्ट्रिंग रिवर्स प्रोग्राम में टिपिकल अप्रोच यह होगी, कैरेक्टर्स को स्टैक में पी यू एस एच करो, फिर स्टैक एम टी होने तक पी ओ पी करके रिवर्स स्ट्रिंग बनाओ। सोर्स का कोर आइडिया यही है, प्रोग्राम लिखते समय एम्प्टी कंडीशन और पॉप ऑपरेशन का सेफ हैंडलिंग दिखाना। केवल बिल्ट इन रिवर्स मेथड लिख देना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का आंसर नहीं मान जाएगा।
पैरेंथेसिस मैचिंग क्वेश्चन में डायग्राम या ट्रेस बहुत यूजफुल है। ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलने पर पी यू एस एच, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलने पर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग तक पी ओ पी। प्रॉपर नेस्टिंग का मतलब इनर पेयर पहले क्लोज हो। जैसे नेस्टेड एक्सप्रेशन में बाहर वाली ओपनिंग तभी रिजॉल्व होगी जब अंदर वाली पेयर कंप्लीट हो जाए। स्टैक इसी नेस्टिंग ऑर्डर को मेंटेन करता है।
इनफिक्स कन्वर्जन में आंसर लिखने का सीक्वेंस साफ रखो, एम्प्टी पोस्ट एक्स, इनपुट एक्सप्रेशन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेसिंग, ऑपरेंड अपेंड, लेफ्ट पैरेंथेसिस पी यू एस एच, राइट पैरेंथेसिस पर पी ओ पी एंटेल मैचिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कंपैरिजन और अंत में रिमेनिंग ऑपरेटर्स पी ओ पी। एल्गोरिदम में स्टेप नंबर्स या क्लियर बुलेट्स यूज करना बेहतर रहेगा।
एक हाई वैल्यू कंपैरिजन कन्वर्जन के समय स्टैक ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस के लिए है, जबकि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन के समय ऑपरेंड्स के लिए। कन्वर्जन आउटपुट स्ट्रिंग बनाता है, इवैल्यूएशन न्यूमेरिक या ऑपरेंड रिजल्ट को स्टैक पर वापस रखता है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों प्रोसेसेस कंपेयर करने को कहा जाए तो यही कॉन्ट्रास्ट आंसर का सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए।
ऑड नंबर्स वाला प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी स्टैक ऑपरेशंस को कंबाइन करता है। यूजर से नंबर्स लेकर केवल ऑड नंबर्स स्टैक में स्टोर किए जाते हैं, फिर स्टैक डिस्प्ले किया जाता है और एलिमेंट्स पीओपी करते हुए लार्जेस्ट ऑड नंबर मेंटेन किया जाता है। हिंट का लॉजिक है कि हर रिट्राइव्ड एलिमेंट को अब तक के लार्जेस्ट एलिमेंट से कंपेयर करते जाओ जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो।
यह एक्सरसाइज सिर्फ मैक्सिमम निकालने की नहीं, स्टैक ट्रेवर्सल समझने की भी है, क्योंकि पीओपी ऑर्डर इंसर्शन ऑर्डर से अलग होगा, फिर भी सभी स्टोर्ड ऑड एलिमेंट्स इवेंचुअली रिट्रीव हो जाते हैं। स्टूडेंट को डिस्प्ले ऑर्डर और रिट्रीवल ऑर्डर के डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑर्डर से नहीं, कंपैरिजन से मिलेगी।
अब एक इंटीग्रेटेड चैलेंज, ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते समय सी मल्टीप्लाई डी पहले ग्रुप्ड होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस हायर है। एग्जैक्ट ट्रेसिंग में ऑपरेटर स्टैक में रहेंगे और लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आने पर हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आउटपुट में जा सकता है। हर स्टेप में ऑपरेंड डायरेक्ट आउटपुट और ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक याद रखो।
एग्जाम में अगर तुम्हें डाउट हो कि ऑपरेटर पीओपी करना है या पीयूएसएच, तो स्टैक के टॉप ऑपरेटर और करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कंपेयर करो। पैरेंथेसिस भी कॉन्टेक्स्ट बदलती है। और फाइनल इनपुट के बाद स्टैक को खाली करना मत भूलो। कन्वर्जन का आंसर अक्सर सिर्फ बीच के स्टेप से नहीं, फाइनल क्लीनअप से कंप्लीट होता है।
अब तक हम इम्प्लीमेंटेशन, नोटेशंस और दोनों एल्गोरिदम्स कवर कर चुके हैं। सबसे यूजफुल रिवीजन एक्टिविटी होगी कि नोटबुक में तीन कॉलम्स बनाओ, इनपुट सिंबल, स्टैक स्टेटस, आउटपुट या रिजल्ट स्टेटस। कन्वर्जन और इवैल्यूएशन के लिए यही फॉर्मेट अलग अलग भरोगे, इससे रोट मेमोराइजेशन कम और प्रोसेस मास्टरी ज्यादा होगी।
फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने का मैकेनिज्म है। स्टैक लीनियर ऑर्डर्ड कलेक्शन है, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पीओपी से होते हैं। इसका गवर्निंग प्रिंसिपल लीफो है, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट फर्स्ट रिमूव्ड। ये चैप्टर का कोर डेफिनेशन फ्रेम है।
ऑपरेशंस में पीयूएसएच टॉप पर इंसर्शन और पीओपी टॉप से डिलीशन है। फुल स्टैक पर पीयूएसएच ओवरफ्लो कंडीशन दे सकता है, एम्प्टी स्टैक पर पीओपी अंडरफ्लो। पाइथन में लिस्ट से स्टैक इंप्लीमेंट होता है, अपेंड इंसर्शन और पॉप डिलीशन करते हैं। राइट मोस्ट एंड को टीओपी मानने के कारण एक्सप्लिसिट टीओपी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती।
फंक्शंस भी एक बार बोलो, इज एम्प्टी एम्प्टी चेक, ऑप पुश अपेंड द्वारा इंसर्शन, साइज लेन द्वारा काउंट, टॉप टॉप मोस्ट वैल्यू रीड करता है, ऑप पॉप सेफ डिलीशन और डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है, डिस्प्ले कंटेंट्स को टॉप से नीचे दिखाता है, टॉप एलिमेंट को रिमूव नहीं करता जबकि ऑप पॉप करता है। यह है कॉमन मिस्टेक, दोबारा मत करना।
अरिथमेटिक नोटेशन में इनफिक्स ऑपरेटर के बीच प्रीफिक्स ऑपरेटर से पहले और पोस्टफिक्स ऑपरेटर के बाद होता है। प्रीफिक्स को पॉलिश और पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश भी कहा जाता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ऑर्डर पहले से पोजिशन होता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल से इवैल्यूएशन सरल होती है।
कन्वर्जन में ऑपरेंड्स पोस्ट एक्स में अपेंड होते हैं, ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस स्टैक में ट्रैक होते हैं। राइट पैरेंथेसिस पर ऑपरेटर्स पीओपी होते हैं और पैरेंथेसिस डिस्कार्ड। एंड में रिमेनिंग ऑपरेटर्स भी पीओपी करने होते हैं। इवैल्यूएशन में ऑपरेंड्स भी यूएसएच होते हैं, ऑपरेटर पर टू एलिमेंट्स पीओपी करके रिजल्ट फिर पीयूएसएच होता है, और फाइनल स्टैक में सिंगल एलिमेंट वैलिड रिजल्ट देता है।
अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे तीन बातें बोलो, अगर 5, 6, 7 पीयूएसएच हो तो पीओपी ऑर्डर क्या होगा, पाइथन में स्टैक के टीओपी के लिए लिस्ट की कौन सी साइड चुन सकते हो, और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में ऑपरेटर आने पर कितने ऑपरेंड्स पीओपी होंगे। तुम्हारा आंसर होना चाहिए 7, 6, 5, राइट मोस्ट एंड और टू ऑपरेंड्स।
एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप लो। आज नोटबुक में एक स्टैक ट्रेस बनाओ, एक स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम लिखो, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को चरण दर चरण पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, और दिए गए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हर ऑपरेशन के स्टैक स्टेटस के साथ इवैल्यूएट करो। आंसर देखने से पहले अपनी रीजनिंग लिखना, यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी तैयारी को मजबूत करेगा।
आज हमने स्टैक को सिर्फ डेफिनेशन की तरह नहीं, एक वर्किंग मेंटल मॉडल की तरह समझा। सेम एनटीओपी, लिफो, ऑपरेशंस, पाइथन लिस्ट, एप्लीकेशंस और एक्सप्रेशन प्रोसेसिंग। अगर कोई स्टेप अभी भी अनक्लियर है, उसे छोटा डाउट बनाकर एडजी से पूछो और एक्सप्लेनेशन के बाद खुद एग्जांपल सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना मास्टरी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट है।
आज की सबसे बड़ी रिमाइंडर, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट कन्वर्जन में ऑपरेटर स्टैक पर, इवैल्यूएशन में ऑपरेंड स्टैक पर। कॉमन मिस्टेक है टॉप और पॉप को सेम समझना, या फाइनल ऑपरेटर्स और फाइनल सिंगल एलिमेंट चेक भूल जाना। अब एक छोटा चैलेंज सॉल्व करो, फिर आराम से रिवाइज करो। एडजी के साथ मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने आंसर पर भरोसा रखो।